ओम शांति।
ओम शांति।
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर स्वयं निराकार परमात्मा ने जो अमूल्य विश्व कल्याणी महावाक्य उच्चारे, उसी के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रस्तुत कर रहा है विश्व का अंतिम सत्य तथा भारत की प्राचीन दैवी संस्कृति का साक्षात्कार कराने वाला एक आध्यात्मिक महानाट्य सत्य महाभारत।
महाभारत की वास्तविकता प्रस्तुत कर मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का अमूल्य ज्ञान प्रदान करने वाला एक अप्रतिम नाट्य सत्य महाभारत।
अंधश्रद्धा का पूर्णतः निर्मूलन कर यथार्थ श्रद्धा का ज्ञान एवं मानवीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य देने वाला विश्व का सबसे कल्याणकारी महानाट्य
सत्य महाभारत।
सत्य महाभारत। इस महानाट्य में भाग लेने वाले कलाकार इस प्रकार है। विशेष निवेदन, श्रीमती गौरी लागू।
प्रास्तविक एवं अंतिम कथन, भ्राता राहुल सोलापुरकर।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भूमिका, भ्राता निमिष तोटे।
महावीर अर्जुन की भूमिका, भ्राता सुहास कुलकर्णी। संगीत दिग्दर्शन तथा गायन, श्रीमती चारुशीला बेलसरे। विशेष सहभाग, भ्राता धनंजय साठे एवं भ्राता प्रमोद चिल्लार। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, राजयोगिनी सुंदरी बहन जी एवं पद्मा बहन जी, ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र, मीरा सोसाइटी, पुणे।
निमित्त लेखक, निर्माता एवं निर्देशन, ब्रह्मा कुमार जगदीश दीक्षित।
ध्वनि मुद्रण, भ्राता मुकुंद फड़कले, स्टूडियो एलकॉम, पुणे, महाराष्ट्र। ओम शांति। आज आपको इस नाटक का छठा भाग श्रवण करना है, महाभारत की सत्यता। महाभारत तब निर्माण होता है जब सद्गुण अवगुणों का कड़ा संघर्ष होता है। सद्गुणों के आधार से अल्प मनुष्य अपना जीवन हिरे तुल्य करते हैं, तो अवगुणों के कारण कई मनुष्यों का जीवन पत्थर जैसा होता है। सद्गुण और अवगुण ही पांडव और कौरवों के निर्मिति का मुख्य कारण है।
सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।
धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।
सद्गुण अवगुण के कारण कोई पांडव है कोई कौरव है। सद्गुण अवगुण के कारण। कोई पांडव है कोई कौरव है।
प्रणाम स्वीकार कीजिए ऋषिकेश। इस समय मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करूंगा तो और किसका प्रणाम स्वीकार करूंगा। मैंने तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया है। प्रिय अनुज, तुम्हें यह स्मृति अवश्य होगी कि आज का स्वाध्याय महाभारत की सत्यता पर है।
हे श्री हरि, इसी विषय में मैं प्रथमतः एक कठिन समस्या प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपको उसका यथार्थ समाधान भी करना है।
अनुज, समस्या कितनी भी कठिन हो उसका समाधान परमात्म ज्ञान में अवश्य है, अतः निस्संदेह अपनी समस्या का कथन करो।
हे मनमोहन, जैसे ही निराकार परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है तो परमात्म ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान, इसमें अंतर निर्माण होता है। शास्त्रों का मनुष्य आत्मा पर इतना प्रभाव है कि बड़े बड़े आचार्य पंडितों के साथ कई मनुष्य आत्माएं शास्त्रों को ही सत्य का प्रमाण मानते हैं और उन सभी शास्त्रों में महाभारत ग्रंथ उन्हें अधिक प्रिय है। हे वासुदेव, अब मेरी समस्या यही है कि महाभारत के ग्रंथ अनुसार जो कथा प्रस्तुत की गई है वो कथा एवं स्वयं परमात्मा ने महाभारत विषय में जो आज तक कथन किया है, इन दोनों में महान अंतर है। परमात्म ज्ञान श्रवण करने के पश्चात मनुष्य के मन में अनेक संभ्रम निर्माण होते हैं। इन संभ्रमों को दूर करना अत्यंत कठिन है। हे मधुसूदन, आपने ही कहा था आपका जन्म सतयुग में होता है। आप सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं। वहां ना कोई धर्मग्लानी है ना अनेक धर्म हैं, परंतु केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। आपने ये भी आश्चर्यकारक विधान किया था कि आपके साथ ना कोई कौरव पांडव थे और ना ही उस काल में महाभारत युद्ध हुआ था। इस प्रकार परमात्म ज्ञान श्रवण करने के पश्चात मन में यही प्रश्न निर्माण होता है कि जन्म जन्मांतर श्रवण करते आए हैं वो शास्त्रों का ज्ञान सत्य है अथवा परमात्म ज्ञान।
हे महावीर, यदि तुम केवल सत्य के अभिलाषी हो एवं तुम्हें संपूर्ण सत्य ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आवश्यक है शांत एवं विवेकशील बुद्धि। देखो पार्थ, जैसे अनेक पुराण कथाओं को मानव सत्य मानते आया है, वैसे ही महाभारत को सत्य मानने के संस्कार मनुष्य में इतने दृढ़ है कि सत्य सम्मुख आने के उपरांत भी उसका मन नहीं मानता, अर्थात शास्त्रों ने उसको अत्यंत प्रभावित किया है। पार्थ, इस कलियुगी असत्य संसार की यही विशेषता है कि सत्य को मनुष्य बुद्धि असत्य मानती है और असत्य को शीघ्र ही सत्य मानती है। इसी के कारण सर्वसाधारण मनुष्य असत्य के आधार से असत्य का कलियुग निर्माण करते हैं तो सत्य के आधार से सत्य परमात्मा सतयुग निर्माण करता है। यही महान अंतर है परमात्मा और मनुष्य आत्मा में। हे महाबाहो, इस असत्य के प्रवाह में सत्य की नौका विरुद्ध दिशा से ले जाना ही महान पुरुषार्थ एवं महानता है। मैं ये जानता हूं कि इस असत्य के युग में सत्य के लिए समाज में आक्षेप अवश्य निर्माण होगा, परंतु इस सत्य को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने की आज्ञा सर्वशक्तिमान परमात्मा ने दी है, क्योंकि सत्य को अपनाने से ही आत्मा का कल्याण होता है।
परंतु हे राधा रमण, परमात्म ज्ञान के अनुसार महाभारत की वास्तविकता एवं सत्यता समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना यह महाकठिन कर्म है, क्योंकि कथारूप महाभारत के प्रति मनुष्यों को इतना दृढ़ विश्वास है कि उसे खंडित करना कठिन है।
कठिन कर्म करना ही तो पुरुषार्थ है अनुज। महाभारत की वास्तविकता सिद्ध करने के लिए अपने युक्तियुक्त वाणी का प्रयोग करो। महाभारत युद्ध पूर्व यह दृश्य प्रस्तुत किया है कि जब दोनों सैन्य दल एक दूसरे के सम्मुख आते हैं तब कौरवों के सैन्य दल में द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे ऋषि मुनि अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तत्पर हैं। कितना अयथार्थ दृश्य है ये। ऋषि एवं आचार्य तो अपने जीवन में अहिंसा को असाधारण महत्व देते हैं, परंतु उन्हें भी हिंसक युद्ध करते महाभारत में दर्शाया है। उनके स्वभाव संस्कार से पूर्णतः विपरीत है ये दृश्य। आचार्य एवं मुनि तो समाज को आध्यात्मिक ज्ञान देकर अहिंसक करने का प्रयास करते हैं और महाभारत में तो वे कुरुक्षेत्र पर युद्ध करते हैं। महाभारत में भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्तियों को देखकर अंतकरण से यही स्वर आता है कि महाभारत तो आज के ही समाज का प्रतिबिंब है इसी समाज में देवी एवं असुरी वृत्ति के मनुष्य हैं। असुरी वृत्ति के मनुष्य अधिक मात्रा में होते हैं जो अधर्म का आचरण करते हैं, मानो वो कौरव है, और देवी वृत्ति के मनुष्य अल्प मात्रा में होते हैं जो धर्म का आचरण करते हैं, अर्थात वो पांडव है। समाज का परीक्षण करते करते भिन्न भिन्न गुण विशेषता को देखने के उपरांत महाभारत लेखक के मन में प्रथमतः कौरव पांडवों की निर्मिति हुई है और उसी के आधार पर महाभारत का महान ग्रंथ निर्माण हुआ है। अनुज, महाभारत एक उद्बोधक कथा अवश्य है, उससे मानव मात्र को यथायोग्य शिक्षा भी प्राप्त होती है, परंतु ना वो कोई वास्तविकता है और ना ही कोई सत्य घटना।
हे जनार्दन, अब मैं ये प्रतीत करना चाहता हूँ कि ये महाभारत कथा कौन से युग में लिखी गई होगी।
अर्थात द्वापर युग में ही ये महाग्रंथ निर्माण हुआ है, जबकि समाज में भिन्न भिन्न वृत्ति के एवं भिन्न भिन्न गुणों के मनुष्य थे। पांडव और कौरवों के लिए माना जाता है कि पांडवों में कई सद्गुण थे और कौरवों में अनेक अवगुण थे। पांडव तथा कौरव तो सद्गुण एवं अवगुणों का प्रतीक है पार्थ, क्योंकि पांडवों में नीति, सदाचार और न्याय बुद्धि के संस्कार थे, तो कौरवों में अनीति, दुराचार और अन्याय बुद्धि के संस्कार थे। पांडव प्रीति बुद्धि युक्त थे, अर्थात भगवान की आज्ञा मानने वाले थे, तो कौरव विपरीत बुद्धि युक्त अर्थात भगवान की आज्ञा मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनमें ईर्ष्या, द्वेष एवं गर्व की परिसीमा हो चुकी थी। पांडव धर्म का आचरण करते थे तो कौरव अधर्म का। पार्थ, वर्तमान समय की परिस्थिति पूर्णतः ऐसी ही है। परमपिता परमात्मा अवतरित होकर विश्व कल्याणार्थ अपना श्रीमत देते हैं, परंतु अत्यल्प मनुष्य आत्माएं ही परमात्मा के श्रीमत का आदर करते हुए अपना जीवन परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं पार्थ कि भगवान की आज्ञा का पालन करने से ही आत्मा का जन्म जन्मांतर का कल्याण होता है। अर्थात वर्तमान समय अत्यल्प आत्माएं प्रीत बुद्धि पांडव है और नास्तिक एवं विज्ञान गर्वित प्रवृत्ति के मनुष्य ही महाभारत प्रसिद्ध यादव है। अंत में है परमात्मा के श्रीमत विरुद्ध आचरण करने वाले विपरीत बुद्धि युक्त भारतवासी कौरव। पार्थ, ये वर्गीकरण स्वयं परमात्मा ने भिन्न भिन्न आत्माओं की विभिन्न स्थिति देखकर किया है, अतः ये निश्चित है कि अधर्म एवं धर्म को स्पष्ट करने के प्रयास में ही महाभारत कथा निर्माण की गई है। महाभारत पुराण कथा अवश्य है, परंतु वो ना कोई वास्तविकता है और ना ही कोई इतिहास।
हे चक्रधर, महाभारत में अनेक देश, अनेक राजा, अनेक भिन्न भिन्न व्यक्ति और विभिन्न घटनाएं दर्शाई हैं। क्या इतनी विशाल पुराण कथा कोई कल्पना से लिख सकता है?
अनुज, क्या तुम्हें मनुष्य के कल्पना शक्ति पर विश्वास नहीं है? मनुष्य अपनी अगाध कल्पना द्वारा कुछ भी नवनिर्माण कर सकता है। तनिक चिंतन करो पार्थ, धर्म, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, ये वास्तविकता में न कोई राष्ट्र पुरुष है और ना ही कोई ऐतिहासिक पुरुष। सभी के जो नाम है वो उनके गुण एवं अवगुण निर्देश करते हैं। भला अपने पुत्रों के नाम अवगुणात्मक कौन रखेगा? दुर्योधन का अर्थ है अनुचित कर्म के अधीन होने वाला, दुशासन अर्थात जिसका शासन विपरीत है, स्वार्थ से मनुष्य अंधा हो जाता है, इसलिए धृतराष्ट्र को नेत्रहीन दर्शाया है। द्रौपदी वस्त्रहरण तो अत्याचारी स्त्री का मूर्तिमंत प्रतीक है। पार्थ, वस्त्रहरण तब होता है जब आत्मा का इंद्रियों पर दुशासन करना आरंभ होता है, अर्थात द्रौपदी वस्त्रहरण तो इस कलियुग की वास्तविकता, सत्यता एवं कलियुगी तमोप्रधान समाज का वास्तविक दर्शन है। क्या तुम्हें इसी समाज में कई दुर्योधन एवं दुशासन की प्रवृत्तियां दृष्टि में नहीं आती? पार्थ, इसी युग में काम विकार की अग्नि भड़क उठती है, न जाने कितने द्रौपदियों का उनके इच्छा विरुद्ध वस्त्रहरण होता होगा। इस प्रकार महाभारत से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अधर्म के कारण ही मनुष्य का सर्वनाश होता है। यही हाल कौरवों का हो गया, अधर्म ने ही उनके लिए विनाश का द्वार खोल दिया।
हे वासुदेव, मेरी समझ में ये नहीं आता कि कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े ज्ञानी पंडित महारथी योद्धा होने के उपरांत भी उनकी पराजय क्यों दर्शाई है।
हे महावीर, ये तो मनुष्य सृष्टि का नियम है कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान और महारथी क्यों ना हो। परंतु यदि वो सत्य के पक्ष में नहीं है तो अंत में उसकी पराजय निश्चित है। कर्ण की व्यक्ति रेखा से मनुष्य को यही शिक्षा प्राप्त होती है। सूर्य पुत्र कर्ण वास्तविक ज्येष्ठ पांडव ही था, परंतु उसने कौरवों का पक्ष स्वीकार किया जो कि अधर्म असत्य और अन्याय का पक्ष था। पार्थ, आज भी कौरवों जैसे विपरीत बुद्धि युक्त मनुष्य समाज में है। रावण के लिए कहा जाता है कि वो शिवधनुष उठा न सका। अनुज ये शिव का ज्ञान शिवधनुष के भांति है, इसे रावण जैसे असुरी वृत्ति के मनुष्य कैसे उठा सकते हैं। प्रीत बुद्धि एक कल्याणकारी और महान शक्ति है। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा के साथ जिसकी प्रीत बुद्धि होगी उसकी विजय निश्चित है, और जिसकी विपरीत बुद्धि होगी उसकी पराजय भी निश्चित है। इससे यही शिक्षा प्राप्त करो कि कौरव पांडव किस युग में निर्माण होते हैं। यही ज्ञान का गुह्य एवं यथार्थ चिंतन है। अब अपनी बुद्धि सूक्ष्म तथा कुशाग्र कर महाभारत का नवसंशोधन करो। पार्थ, नवसंशोधन करो।
हे ऋषिकेश, यह नवसंशोधन करना कठिन है, क्योंकि वर्तमान समय भारतीय समाज की ये मान्यता है कि रामायण महाभारत ही हमारी मूल आदि एवं श्रेष्ठ संस्कृति है। यही भारतीय संस्कृति की वास्तविकता है। ये दो ग्रंथ ही मनुष्य मात्र के लिए आदर्श है।
पार्थ, ये दो ग्रंथ मानव मात्र के लिए अल्प मात्रा में क्यों न हो, आदर्श अवश्य है। तथापि इन दो ग्रंथों से भारत के प्राचीन दैवी संस्कृति का ज्ञान होना असंभव है। अतः वर्तमान समय परम पिता परमात्मा ये ज्ञान देते हैं कि मूल भारतीय एवं प्राचीन संस्कृति में धर्म अधर्म, नीति अनीति, सत्य असत्य, विकारी निर्विकारी, दैवी गुण असुरी गुण, इन विभिन्न गुणों पर आधारित सम्मिश्र समाज नहीं था, परंतु समस्त मनुष्य दैवी कुलोत्पन्न सतो प्रधान थे। वे श्रेष्ठ धर्म का आचरण करते थे, अर्थात वे श्रेष्ठाचारी थे। रामायण महाभारत के लेखक ने आदर्शवाद तो अवश्य प्रस्तुत किया है, परंतु अज्ञानी मनुष्य रामायण महाभारत में जो विपरीत घटनाएं हैं उसे अपनी बुद्धि में रखकर पाप कर्मों का समर्थन करते हैं। इस प्रकार के मनुष्य भारी मात्रा में होने के कारण भारतीय संस्कृति का सतयुग की तुलना में अधिक पतन हो चुका है। देखो पार्थ, मैं कोई भारतीय संस्कृति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस संस्कृति का केवल उत्थान देखना चाहता हूँ। परंतु उत्थान तब हो सकता है जब पतन की वास्तविकता का भान एवं ज्ञान हो। हे भरतवंशी, रामायण महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे समाज का चारित्रिक पतन होना संभव है। पार्थ, द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार करना ये कोई सामाजिक रूढ़ी एवं परंपरा तो नहीं है, तथापि ऐसी कथोकल्पित घटना लेखक ने क्यों प्रस्तुत की है? भरत श्रेष्ठ, इससे भी अधिक कल्पनातीत घटना तो यह है कि कौरवों के साथ द्यूत खेलते समय सब कुछ हारने के उपरांत युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया। क्या पांडवों को इतना भी विवेक नहीं रहा जो अपनी प्रिय पत्नी को दांव पर लगा दिया? सर्व सामान्य मनुष्य भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। कहां चली गई थी पांडवों की सद्बुद्धि? उन्हें यह भी तो सोचना चाहिए कि यदि इस द्यूत क्रीड़ा में हमारी पराजय होगी तो द्रौपदी को कितना क्लेश सहना होगा। इस प्रकार लेखक ने अनेक अघटित घटनाओं को प्रस्तुत किया है। इन समस्त घटनाओं से समाज कौन सा आदर्श प्राप्त करेगा? बोलो अर्जुन, कौन सा आदर्श प्राप्त करेगा?
नहीं वासुदेव, इससे समाज में कोई आदर्श निर्माण नहीं होगा, परंतु अल्प बुद्धि एवं विकृत मनुष्य इन समस्त घटनाओं का अनर्थ अवश्य निर्माण कर सकते हैं।
अब रामायण के उस घटना का तनिक चिंतन करो अर्जुन। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुआ तब श्रीराम शोकाकुल हुए थे। जिस श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है वो श्रीराम सर्वसाधारण मानव के भांति मोहग्रस्त होकर शोकाकुल कैसे हो गए? उन्होंने तो स्थितप्रज्ञ रहकर परिस्थिति का धैर्यता से निवारण करना चाहिए था। जब इस प्रकार की दुखद परिस्थिति में आज का मानव शोकाकुल होता है तो वो यही समर्थन करता है कि यदि श्रीराम को दुख होना अटल है तो हम सर्वसामान्य मानव दुख को कैसे टाल सकते हैं। श्रीराम को सत्य का अवतार माना जाता है। किसी की मृत्यु होती है तो कहते भी है राम नाम सत्य है, परंतु उसी सत्यवादी श्रीराम ने कपट से वाली का वध किया। केवल किसी सामान्य धोबी का कथन श्रवण कर श्रीराम ने सीता का त्याग करना यथायोग्य है? जिस श्रीराम ने महाबली रावण का वध किया उसी श्रीराम को अपने ही 2 पुत्रों के साथ युद्ध के लिए तत्पर होना पड़ा। तत्पूर्व लव कुश ने शक्तिशाली हनुमान और लक्ष्मण सहित श्री राम की समस्त सेना को परास्त किया था। इसी प्रकार रामायण में चाचा भतीजे का युद्ध, महाभारत में भाई भाइयों में युद्ध और ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें भिन्न भिन्न संबंधों में युद्ध हुआ है। इन सभी युद्धों को देखकर बुद्धिमान एवं विचारी मानव के मन में यही प्रश्न निर्माण होना चाहिए कि क्या आदि से आज तक इस प्रकार के युद्ध होते रहना यही भारतीय संस्कृति है? किस युग में था भारत अहिंसा परमो धर्म मानने वाला? क्या इस भारत में कभी सुख शांति पवित्रता का अखंड राज्य नहीं था? कब था भारत संपूर्ण निर्विघ्न? कब थी भारत में श्रेष्ठ संस्कृति? कब था भारत में एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही राज्य? कब थी भारत में एक ही सतो प्रधान मर्यादा युक्त दैवी संस्कृति?
हे पद्मनाभ, महाभारत कथा ने तो सतयुग की वास्तविकता को ही समाप्त किया है। ऐसा लगता है कथारूप महाभारत ने तो भारत की श्रेष्ठ एवं मूल दैवी संस्कृति की विस्मृति कराई है। अर्थात सतयुग त्रेता युग में केवल दैवी स्वराज ही था, ये किसी को भी ज्ञात नहीं है।
भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा विधान पूर्णतः सत्य है। यदि महाभारत के कथाकार को दैवी स्वराज्य का ज्ञान होता तो वो द्रौपदी वस्त्रहरण जैसा दृश्य कदापि प्रस्तुत नहीं करता। ऐसा दृश्य प्रस्तुत करना आदरणीय वीर पुरुषों का ही नहीं परंतु भारतीय संस्कृति का भी अवमान है। पार्थ, दुर्योधन के साथ कर्ण जैसा सद्गुणी एवं वीर पुरुष द्रौपदी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है? निस्संदेह दुर्योधन दुष्ट वृत्ति का ही था, परंतु महारथी कर्ण की इतनी विपरीत बुद्धि कैसे हो गई? उसकी गुण विशेषता और कर्म, इनमें महत अंतर है। इन समस्त घटनाओं को देखकर बुद्धिमान मनुष्य ने यही मत प्रदर्शित करना चाहिए कि महाभारत कथोकल्पित है। निस्संदेह कथोकल्पित है पार्थ।
हे वासुदेव, महाभारत युद्ध के लिए ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रेरणा से ही ये युद्ध हुआ था और वो प्रेरणा है भगवद गीता। मनुष्य कहते भी हैं कि कुरुक्षेत्र पर अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को शत्रुपक्ष में देखकर हतबल एवं दुखी हुआ था। तत्पश्चात भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान प्रदान कर युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था।
अपना सद्विवेक जागृत करो भरतवंशी, भगवान थोड़े ही ऐसे हिंसक युद्ध के लिए किसी को प्रवृत्त करेगा। वो तो अहिंसा परमो धर्म का सदा कल्याणकारी एवं सुखदायी ज्ञान प्रदान करेगा। तनिक विचार करो, इस श्री कृष्ण को बहुतांश मनुष्य आत्माएं भगवान मानती है और भगवान के सम्मुख महाभारत जैसा महाभयानक युद्ध हो सकता है? महाभारत में युद्ध का दृश्य रक्त रंजित प्रदर्शित किया गया है, मानो रक्त की नदियां बह रही है। पार्थ, कितने योद्धाओं की अमानुष मृत्यु होती है। शक्तिशाली भीम दुशासन का एक हाथ उखाड़कर फेंक देता है और उसके छाती का लहू भी प्राशन करता है। ये तो क्रूरता की परिसीमा नहीं तो और क्या है पार्थ? इसी प्रकार से वीर अभिमन्यु का वध अपमानकारक एवं क्लेशकारक हुआ है। कर्ण का वध भी युद्ध का नियम उल्लंघन कर अनीति के आधार पर हुआ है। कौरव पांडव जीवन भर जिनके चरणों पर अपना मस्तक आदर पूर्वक रखते आए थे, उस आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य का तो मस्तक ही शरीर से पृथक किया जाता है। ऐसा मृत्यु का तांडव देखकर मानवता भी कांप उठेगी।
नहीं श्रीनाथ, नहीं, मेरी अंतरात्मा कहती है जो मन वचन कर्म से अहिंसा परमो धर्म का पालन करता है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सम्मुख इतना हिंसक एवं भयानक युद्ध होना असंभव है, पूर्णतः असंभव है।
भरत श्रेष्ठ, युद्ध समाप्ति के उपरांत कुरुक्षेत्र श्मशान के भांति दर्शाया है। यदि ऐसा युद्ध वास्तव में होता तो कितने नारियों को विधवा होना पड़ता, कितने बालक अनाथ होते। पार्थ, जो पराजित हुए हैं उन्हें भी दुख, तो जिन्होंने विजय प्राप्त की है उन्हें भी दुख। युद्ध के पूर्व मोहवश अर्जुन दुखी हुआ था, भगवत गीता श्रवण करने के उपरांत एवं युद्ध समाप्ति पर भी वो दुखी अशांत एवं मोहग्रस्त ही था। बाणों की शैया पर पितामह भीष्म को जब अर्जुन देखता है तो उसका शोक तीव्र होता है और महारथी कर्ण की वास्तविकता प्रतीत करने के पश्चात सभी पांडव अतिशोकवश होते हैं। कौरवों के पक्ष में धृतराष्ट्र और गांधारी को भी अत्यंत दुख एवं मानसिक पीड़ा निर्माण होती है। इस प्रकार दोनों पक्ष में दुख और अशांति की परिसीमा होती है। हे कुरुनंदन, भगवान का गायन तो ये है कि वो सुख करता, दुख हरता, शांति दाता एवं शांति का सागर है। अतः किसी हिंसक युद्ध के लिए निमित्त होकर दुख और अशांति निर्माण करने का कर्म भगवान कदापि नहीं कर सकता, काल त्रही नहीं कर सकता। भरत श्रेष्ठ, वास्तव में भगवान का हिंसक युद्ध से कोई संबंध नहीं है। भगवान और हिंसा, ये दोनों शब्द पूर्णतः विपरीत है, क्योंकि जब इस धरा पर भगवान अवतरित होता है तब वो मनुष्य आत्माओं को अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा देता है, अर्थात भगवान किसी को भी हिंसक युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं करते, परंतु वो हिंसा से सदा के लिए मुक्त कराते हैं। हिंसक युद्ध अर्थात माया के साथ युद्ध करने के लिए प्रवृत्त करना, यही भगवान का कर्तव्य कर्म है। अहिंसक युद्ध ही धर्म युद्ध तथा कल्याणकारी युद्ध है। भरत श्रेष्ठ, मनुष्य के मन में जो अनेक अशुद्ध, अपवित्र और विकारवश संकल्प आते हैं, वास्तव में वही मानव मात्र के शत्रु है, वही कौरवों के भांति दुख देते हैं। किसी दुष्ट मनुष्य को नष्ट करना अहिंसक युद्ध नहीं है, परंतु उसके मन में जो दुष्ट विचारों का असुर है उसे नष्ट करना ही महान पुरुषार्थ एवं अहिंसक धर्म युद्ध है। पार्थ, सत्य तो यही है कि भगवान ऐसे सूक्ष्म एवं अहिंसक युद्ध के लिए मनुष्य आत्मा को प्रेरित करता है। यही गीता का मर्म है पार्थ, यही गीता का मर्म है। ये सदा ध्यान रहे कि समस्त मनुष्य सृष्टि को ही हिंसक युद्ध से मुक्त करने के लिए निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा गीता ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अब तुम्हें केवल अहिंसक युद्ध करना है पार्थ। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी तो तुम्हें अवश्य ही स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। हिंसक युद्ध से कोई भी स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त नहीं कर सकता।
हे ऋषिकेश, यथावकाश क्यों न हो, परंतु सत्य महाभारत एवं सत्य गीता ज्ञान का गुह्य रहस्य मेरी बुद्धि में स्पष्ट हो रहा है। मेरी अंतरात्मा में ज्ञान का ये प्रकाश आया है कि द्वापर युग से मनुष्य की वृत्ति हिंसक होने के कारण ही भगवद गीता भी कलंकित हुई है। हिंसा मनुष्य को शीघ्र ही अशांति की ओर ले जाती है। भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा एक भी सम्राट नहीं जिसने हिंसक युद्ध करके शाश्वत शांति प्रस्थापित की हो।
पार्थ, इस मनुष्य सृष्टि चक्र में ये कल्प कल्प का सिद्धांत है कि केवल निराकार परमात्मा के आदेश द्वारा धर्म युद्ध करने से शाश्वत सुख, शाश्वत शांति एवं शाश्वत राज्य प्राप्त होता है। इतिहास में सम्राट अशोक का उदाहरण देखो, वो सम्राट होने के उपरांत भी दुखी हुआ था, न चैन से राज्य शासन कर सकता था, न चैन से सो सकता था और न ही चैन से भोजन कर सकता था, क्योंकि पार्थ उसने हिंसक युद्ध किया था। यदि तुम्हें सुख शांति युक्त राज्य प्राप्त करना है तो पुरुषोत्तम संगम युग पर निराकार परमात्मा जो संपूर्ण अहिंसक एवं निष्कलंक गीता ज्ञान प्रदान करते हैं उसे ग्रहण करो, उसके श्रीमत का पालन करो तो जन्म जन्मांतर का कल्याण हो जाएगा। अब ये सदा के लिए मन से निकाल दो कि महाभारत युद्ध पूर्व इस श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान प्रदान किया था। गीता में हिंसक युद्ध प्रस्तुत करने से और गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण को मानने से गीता का महान सत्य प्रायः लोप हो गया। इस प्रकार गीता भी काल्पनिक, महाभारत भी काल्पनिक, तो महाभारत के बहुतांश व्यक्ति भी काल्पनिक है पार्थ। उसमें केवल दो व्यक्ति काल्पनिक नहीं थे और वो दो व्यक्ति है राधा कृष्ण, बाकी है सब लेखक की कल्पना, क्योंकि लेखक भारत की मूल देवी संस्कृति के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ था। इस परम सत्य की कभी विस्मृति ना हो कि जब राधा कृष्ण होते हैं तो संपूर्ण विश्व में केवल देवी कुलोत्पन्न मनुष्य होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि राधा कृष्ण के जीवन में महाभारत जैसी कथा का कोई स्थान नहीं है।
हे मधुसूदन, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। महाभारत में आपका वास्तविक जीवन, आपके वास्तविक कर्म एवं वास्तविक महिमा इसका यथार्थ दर्शन नहीं है, परंतु मिथ्या दर्शन है। अब आप ही अपने मुक्कमल द्वारा अपने वास्तविक जीवन का परिचय दीजिए, जो मनुष्य मात्र के लिए आदर्श हो, जिससे सभी को ये ज्ञात हो कि मानवीय मर्यादा क्या होती है, सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष कैसा होता है, सर्वश्रेष्ठ धर्म एवं अहिंसा का पालन किस प्रकार किया जाता है।
पार्थ, सत्य तो यह है कि जब इस धरा पर देवता होते हैं तो असुर नहीं होते हैं, परंतु ये ज्ञान लेखक को ना होने के कारण उसने महाभारत में मुझे कई असुरों का वध करते प्रदर्शित किया है। मैं तो अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाला देवता हूँ, और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि सतयुग में सभी सूर्यवंशी कुलोत्पन्न देवी देवता ही होते हैं, अर्थात कंस, जरासंध, अकासुर, बकासुर, ये तो मानव निर्मित कल्पना है। इस प्रकार की दूसरी कल्पना है मक्खन चुराने की, जिसका जन्म होते ही जो सुवर्ण चम्मच से दूध प्राशन करता है वो मक्खन की चोरी क्यों करेगा? यदि भारत का सर्वोच्च राजकुमार ही ऐसी हरकत करेगा तो समाज में आदर्श क्या रहेगा? जिसका गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम, वो विवाह के लिए किसी स्त्री का हरण क्यों करेगा? उसी प्रकार गोपियों के वस्त्र हरण कर वृक्ष पर बैठ जाना, इस प्रकार के कर्म तो कलयुग में भी निंदनीय एवं चरित्रहीन माने जाते हैं। पार्थ, ये तो मेरे चरित्र संपन्न जीवन पर अत्यंत कलंक है, और इससे भी बढ़कर कलंक तो 16,000 नारियों के विषय में है। तुम्हें तो ज्ञात है कि मेरा विवाह केवल राधा से होता है। अनुज, कोई विरला ही जानता है कि मेरी प्रवृत्ति गृहस्थी पवित्र थी, और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही स्पष्ट की है कि मेरे मुकुट में जो मयूर पंख है वो मेरे संपूर्ण निर्विकारी अवस्था का प्रतीक है। परंतु अज्ञानवश आज का मानव यही समझते आया है, जबकि श्री कृष्ण ने इतने विवाह किए हैं तो वो अवश्य विकारी ही होगा। कितना अज्ञान एवं अपवित्र विचार है अज्ञानी मनुष्यों का।
केशव केशव, ये तो सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम का, भारत की मूल एवं पवित्र दैवी संस्कृति का, साथ ही साथ परमात्मा निर्मित देवी देवता धर्म का भी घोर अपमान है। महाभारत में आपके विषय में जो भी घटनाएं हैं उसे देखकर बुद्धिमान विवेकशील व्यक्ति यही मत देगा कि कोई भी मर्यादा पुरुषोत्तम इस प्रकार के कर्म कर ही नहीं सकता। महाभारत के लेखक ने तो आपका अयथार्थ एवं असत्य दर्शन प्रस्तुत किया है।
पार्थ, महाभारत की कथोकल्पित कथा ने मेरा संपूर्ण जीवन ही कलंकित किया है। मुझ पर अनेक मिथ्या आरोप किए हैं, पूर्णतः विपरीत घटनाएं प्रस्तुत की हैं। मेरा शरीर श्वेत वर्ण का होते हुए भी महाभारत में मुझे श्याम वर्ण दर्शाया है। उससे भी अधिक आश्चर्य तो यह है कि जब कोई व्यक्ति दुष्कृत्य करता है तब उस दुष्कृत्य को कृष्ण कृत्य भी कहा जाता है। इससे अधिक ग्लानि कौन सी हो सकती है पार्थ? आज तक कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारियां मेरी वास्तविकता प्रस्तुत कर रही हैं, परंतु कोई विरला ही इस वास्तविकता को मानता है। मेरी जीवन कहानी, मेरी वास्तविकता एवं मेरी सत्यता मनुष्य कल्पना से अत्यंत भिन्न है। पार्थ, मैं वो कथोकल्पित कृष्ण नहीं हूँ जिसने बाल्यावस्था में माखन की चोरी एवं युवावस्था में गोपियों के वस्त्र हरण किए थे। पार्थ, मैं वो कृष्ण नहीं हूँ जिसने विवाह के लिए किसी नारी का अपहरण किया था। पार्थ, मैं वो कृष्ण नहीं हूँ जिसने 16,000 नारियों के साथ विवाह किया था। मैं वो कृष्ण नहीं हूँ जिसने अपने ही मामा कंस का मुष्ठी प्रहार से तथा शिशुपाल का चक्र से वध किया था। मैं वो कृष्ण नहीं हूँ जिसने महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र अर्जुन के रथ का सारथ्य करके उसे गीता ज्ञान भी दिया था। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वास्तव में वही कृष्ण हूँ जो ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं वही कृष्ण हूँ जो अहिंसा परमो धर्म का 100% पालन करने वाला है। मैं वही कृष्ण हूँ जो संपूर्ण निर्विकारी है। पार्थ, मैं वही कृष्ण हूँ जिसका जीवन कमल पुष्प समान निष्कलंक था और जिसने समस्त विश्व पर राज्य किया था। पार्थ, मुझसे अधिक मेरी वास्तविकता और कौन जान सकता है?
पद्मनाभ, मनुष्य ने अपनी कल्पना से कहो अथवा अज्ञानवश कहो, आपकी मिथ्या जीवन कहानी प्रस्तुत करके आपका निष्कलंकित जीवन कलंकित किया है।
हे धनंजय, परंतु इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सत्य परमात्मा ने इस श्री कृष्ण के संपूर्ण कलंक एवं मिथ्या आरोप नष्ट करके समस्त विश्व को मेरा सत्य दर्शन करवाया है, और इसी सत्य दर्शन द्वारा मेरे संपूर्ण पवित्र जीवन का प्रकाश अब विश्व में फैल जाएगा। इसके उपरांत आधा कल्प समाप्त होने तक मेरी कोई ग्लानि नहीं करेगा, कोई ग्लानि नहीं करेगा। इस प्रकार महाभारत निर्मित मेरी जीवन कहानी और मेरा वास्तविक जीवन, इन दोनों में महत अंतर है। भरत श्रेष्ठ, रामायण महाभारत के कारण ही सतयुग त्रेतायुग की सत्यता एवं वास्तविकता प्रायः लोप हो गई। अतः परम सत्य तो यही है कि सतयुगी भारत महान अवश्य था, परंतु उस समय कोई भी महाभारत जैसा युद्ध हुआ ही नहीं था। ये विवेक जागृत करो कि परमात्मा तो संपूर्ण अहिंसक सतो प्रधान दैवी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ऐसे सतो प्रधान सृष्टि में कंस एवं कौरों जैसी तमो प्रधान आत्माएं आई कहां से? ये वास्तविकता किसी को भी ज्ञात नहीं कि मानव अपने तंत्र से असुरी पारतंत्र निर्माण करता है, तो परमात्मा अपने तंत्र से दैवी स्वातंत्र निर्माण करता है। पार्थ, जब अज्ञान के आधार पर असत्य का अंधकार निर्माण होता है, तब परमात्मा ज्ञान के आधार पर सत्य का प्रकाश देता है। और वो प्रकाश यही है कि सतयुग में मेरे सभी सगे संबंधी देवी देवता ही थे। हे गुरुनंदन, परमात्मा निर्मित सत्य महाभारत श्रवण करने के उपरांत मेरे भक्तों को परमानंद होगा और उनके मुख से यही शब्द प्रकट होंगे कि मेरा कृष्ण ना हिंसक था, ना विकारी था और ना ही उसने कभी चोरी जैसी हरकत की है। मेरा कृष्ण तो निर्विकारी एवं अहिंसा परमो धर्म से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम था। इसी प्रकार श्री राम के भक्तों को भी आनंद होगा, उनके मुख से भी यही बोल निकलेंगे कि मेरे श्री राम ने न किसी रावण को मारा, न बाली को कपट से मारा, मेरे श्री राम ने न कभी अपनी पत्नी सीता का त्याग किया और न ही सीता माता का रावण ने अपहरण किया था। पार्थ, रामायण महाभारत के कथाकार ने ये लिखना आवश्यक था कि इस कथा में श्री सीताराम एवं राधा कृष्ण व्यतिरिक्त समस्त पात्र एवं घटनाएं कल्पित है। यदि वो ऐसा लिखता तो विवेकशील मानव कभी भी इस संभ्रम में नहीं रहता कि ये घटनाएं ऐसे कैसे हो सकती हैं। पार्थ, महाभारत का ग्रंथ जरा झांक कर देखो, उसे पढ़ने के उपरांत ऐसा अनुभव होता है कि ना ये कोई हकीकत है और ना ही कोई इतिहास। पार्थ, महाभारत की कई कथाएं तो परिकथा के भांति अनुभव होती है।
हे श्रीनाथ, महाभारत में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो परिकथा के भांति अनुभव होती है?
पार्थ, तुम्हें तो राजा शांतनु की कथा अवश्य ज्ञात होगी। राजा शांतनु का विवाह स्वर्ग लोक की गंगा से होना, गंगा ने अपने ही सात पुत्रों का जल समर्पण करना, तब तक शर्त अनुसार राजा ने मौन धारण करना, आठवें पुत्र के समय राजा ने मौन भंग कर गंगा को प्रश्न पूछना, फिर गंगा का गुप्त होना, आठवां पुत्र अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने वाला भीष्म, जिस प्रकार भीष्म का जन्म गंगा नदी से होता है उसी प्रकार कौरव पांडवों का जन्म भी कल्पनातीत एवं अप्राकृतिक दर्शाया है। किसी एक स्त्री को 100 पुत्र होना असंभव है और कर्ण का जन्म सूर्य के द्वारा होना तो अति असंभव है। पार्थ, कौरव पांडवों के जन्म से ही विवेकशील व्यक्ति को संदेह निर्माण होना आरंभ होता है। अब तनिक महाभारत की इस घटना की ओर ध्यान दो। गंगा नदी के तट पर बाल्य अवस्था के समस्त कौरव पांडव विहार करने के लिए जाते हैं। वहां कपट से भोजन के समय दुर्योधन ने भीम पर विष प्रयोग करना, उसके उपरांत उसे मूर्छित अवस्था में गंगा के प्रवाह में ढकेल देना, भीम का उसी अवस्था में नागलोक पहुंचने के पश्चात वहां उसका स्वागत होना, स्वागत के उपरांत भीम 8 कुंभों का रसपान करता है। पार्थ, जहां पानी ही पानी है वहां रसपान करना संभव हो सकता है? कौरवों की दुष्प्रवृत्ति प्रदर्शित करने अर्थ लाक्षागृह के षड्यंत्र की कथा लेखक द्वारा निर्माण की गई है। हिडिंबा के साथ भीम का संबंध आना और भीम से हिडिंबा को घटोत्कच नामक असुर पुत्र की प्राप्ति होना, यह भी महाभारत द्वारा निर्माण किया गया एक आश्चर्य ही है। बकासुर नामक असुर की कथा तो अत्यंत अतिरंजित है। उसने नगर वासियों को किस प्रकार का भोजन देने के लिए विवश किया था ये तो सभी मनुष्य भलीभांति जानते हैं। इस महाआपत्ति के कारण सभी नगरवासी भयग्रस्त एवं दुखी हुए थे, परंतु शक्तिशाली भीम ने बकासुर का वध करके नगरवासियों को दुख एवं भयबंधन से मुक्त किया था। जरासंध वध भी अचंभित करने वाला है। मल्ल युद्ध के समय भीम जरासंध के शरीर के 2 हिस्से करता है, परंतु वो दोनों हिस्से जुड़कर जरासंध पुनर्जीवित होता है। ऐसा कई बार होता है, और जब दोनों हिस्से भीम विरुद्ध दिशा में फेंक देता है तब जरासंध का देहांत होता है। अनुज, जैसे भीम अनेक असुरों का वध करता है वैसे महाभारत में मुझे भी कई असुरों का वध करते हुए दर्शाया है। पार्थ, मैंने तो अपने वास्तविक जीवन में कभी असुर देखा ही नहीं था, तो उसका वध करने का प्रश्न ही निर्माण नहीं होता। ये सभी कथाएं मनुष्य की केवल कल्पना है। इस पुराण कथा को सत्य एवं वास्तविक मानना एक प्रकार की अंधश्रद्धा ही है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अब तक जीवित मानना ये भी महाभारत द्वारा निर्माण की गई अंधश्रद्धा नहीं तो और क्या है? पार्थ, अंत में मैं तुम्हें एक ही कथा का सार कथन करता हूँ जिस कथा से शिक्षा प्राप्त होती है। जब किसी वन में युधिष्ठिर को तृष्णा के कारण जल प्राशन करने की इच्छा निर्माण होती है तब वो सहदेव से कहता है कि अनुज, इस वन में जो सरोवर है वहां से मेरे लिए जल ले आना। सहदेव को भी जल की तृष्णा थी, जब वो सरोवर का जल प्राशन करने के लिए झुक जाता है, एक अपरिचित पुकार आती है, ठहरो, ये मेरा सरोवर है, मैं यक्ष हूं, प्रथमतः मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर दो, तत्पश्चात ही तुम जल प्राशन कर सकते हो। परंतु सहदेव उस पुकार की ओर इतना ध्यान नहीं देता, वो अपनी अंजलि में जल लेता है, परंतु तत्क्षण वो मूर्छित होता है। इस प्रकार अन्य तीनों भाइयों की यही दुर्दशा होती है और अंत में स्वयं युधिष्ठिर उस स्थान पर पहुंचते हैं। युधिष्ठिर यक्ष के समस्त प्रश्नों के यथार्थ उत्तर देते हैं। अनुज, भले ही परिकथा जैसी कथा है, परंतु इसमें अल्प क्यों न हो, ज्ञान अवश्य है, जो यक्ष के प्रश्न एवं युधिष्ठिर के उत्तर से प्रतीत होता है।
हे श्रीनाथ, वर्तमान समय तो अनेक पुराण कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें केवल रमणीकता है। समाज कुछ शिक्षा प्राप्त करे, किसी का जीवन परिवर्तन हो, ऐसा कोई ज्ञान उसमें नहीं होता। केशव, इन पुराण कथा में अत्यंत अचंभित करने वाले दृश्य होते हैं। इतना ही नहीं, परंतु देवता एवं असुरों का घमासान युद्ध प्रदर्शित किया जाता है।
भरत श्रेष्ठ, ऐसा दृश्य प्रदर्शित करना, ये तो देवी देवताओं के संपूर्ण अहिंसक महिमा पर कलंक है। पौराणिक कथा होते हुए भी उसमें क्रूरता की परिसीमा होती है। उसे देखकर बुद्धिमान मानव विचार करता है कि अहिंसा परमो धर्म से युक्त देवता इस प्रकार की हिंसा कर सकते हैं। श्री विष्णु, श्री गणेश, श्री शंकर, देवताओं का राजा इंद्र, इन समस्त देवताओं को असुरों के साथ युद्ध करते प्रदर्शित किया है। वे असुरों को इतनी क्रूरता से दंड देते हैं कि उनके मस्तक ही शरीर से पृथक हो जाते हैं। जब असुरों का अंत होता है तो सभी देवों को अत्यंत आनंद होता है। सभी देव स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर विजयी देवता पर पुष्प वृष्टि करते हैं। इस प्रकार देवता असुरों से अधिक शक्तिशाली थे। यही साधारण उद्देश्य है देवता और असुरों का युद्ध प्रस्तुत करने का। पार्थ, मनुष्य की गुणवत्ता केवल शारीरिक बल पर निर्भर नहीं होती, परंतु मनुष्य की गुणवत्ता निर्भर होती है उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विचार, उसके सद्गुण, अनेक कला और सबसे महत्वपूर्ण है उसका आचरण। अतः मनुष्य ने देवताओं का केवल शारीरिक बल नहीं, परंतु उनका आत्मबल, उनकी महानता, पवित्रता एवं दिव्यता, इन आदर्शों को उठाना चाहिए। देवताओं के साथ असुरों का युद्ध प्रदर्शित करना समाज को सत्यता से एवं वास्तविकता से पथभ्रष्ट करना है। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ये चिंतन रहे कि क्या अहिंसा परमो धर्म युक्त देवता इतने क्रूर तथा हिंसक थे। पार्थ, यदि इस प्रकार देवता युद्ध करते तो उन्हें देवता नहीं परंतु क्षत्रिय कहना चाहिए।
तुम्हारा कहना सत्य है केशव, परंतु इस प्रकार का चिंतन करने वाले मनुष्य अत्यल्प हैं, क्योंकि बहुतांश मनुष्य देवता एवं असुरों के युद्ध में बड़ी रुचि लेते हैं। उन्हें ऐसे ही युद्ध अधिक पसंद आते हैं। असुरों का अंत होने के उपरांत उन्हें बड़ा आनंद होता है।
एक सत्य कहूं अनुज, ये सभी बाल बुद्धि के लक्षण है। ज्ञानियों का तथा योगियों का युद्ध ऐसा नहीं होता। उसका युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, परंतु माया अर्थात पांच विकारों के साथ होता है। ज्ञानी जानता है स्थूल युद्ध का मूल कारण पांच विकार ही है। यदि समस्त विश्व की मनुष्य आत्माएं पांच विकारों के साथ युद्ध करेगी तो यह संपूर्ण विश्व हिंसक युद्ध से मुक्त होगा। हे गुरुनंदन, ये ज्ञान बिंदु सदा बुद्धि में रहे कि जब इस धरा पर असुर होते हैं अर्थात असुरी गुण के मनुष्य होते हैं, तब यहाँ देवताओं की परछाई भी नहीं रहती। अतः देवता और असुरों का युद्ध होना पूर्णतः संभव है। देवता तो अहिंसा परमो धर्म से युक्त है, ना वे अपने जीवन में किसी की हिंसा करते हैं और ना ही किसी की हिंसा होते हुए देख सकते हैं। अतः किसी भी देवता का हिंसक युद्ध प्रदर्शित करना पूर्णतः ज्ञान है। पार्थ, देवताओं का वास्तविक जीवन मनुष्य के अज्ञान अंधकार ने ढक दिया था, परंतु परमात्मा ज्ञान के प्रकाश द्वारा उनका वास्तविक जीवन अब स्पष्ट हो चुका है। अतः देवताओं के विषय में कोई भी पुराण कथा ना सुनाओ, परंतु उनका सत्य जीवन दर्शन समाज के सम्मुख प्रस्तुत करो।
हे पुरुषोत्तम, ऐसी कथाएं निर्माण होने का कारण ही क्या है? यह असत्य निर्माण ही क्यों होता है?
पार्थ, मनुष्य सृष्टि का यह नियम है, जिस सृष्टि में अमृत जैसा जीवनदान देने वाला फल निर्माण होता है तो उसी सृष्टि में मनुष्य को मृत्यु देने वाला फल भी निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार इस मनुष्य सृष्टि में सत्य के साथ असत्य भी निर्माण होता है। मनुष्य ने क्या स्वीकार करना है, ये तो उसके विवेक पर निर्भर है। उसी विवेक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो बुद्धि का अंतिम निर्णय यही होगा कि मानव द्वापर युग से रजो प्रधान होने के कारण उसी प्रकार की व्यक्ति रेखाएं एवं कथानक उसने अपनी कथा में प्रस्तुत किया है। कलयुग में मानव तमो प्रधान होने के कारण वो देवताओं को भी विकारी समझने लगा। तमोगुणी बुद्धि सत्य को असत्य में परिवर्तन कर देती है। पार, भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मंदिरों में भी देवताओं के विकारी चित्र एवं मूर्तियां देखने में आती हैं।
हे पद्मनाभ, वास्तविक देवताओं का दर्शन कितना दिव्य, पवित्र एवं मंगलमय होता है।
भरत श्रेष्ठ, ये दर्शन इसलिए मंगलमय है कि प्रत्येक देवता का प्रत्येक कर्म पवित्र था। फलस्वरूप उनके कर्मेंद्रियों को आदर पूर्वक कमल नयन, कमल हस्त, कमल चरण एवं मुख कमल कहा जाता है। पार्थ, देवताओं में काम विकार तो अंशमात्र भी नहीं होता, तथापि कितनी ग्लानी की है मनुष्य ने अपने ही पूर्वजों की। क्या मनुष्य राम की ये महिमा भी भूल गया कि जहां राम है वहां काम नहीं? क्या मनुष्यों को भगवत गीता के इस महावाक्य की विस्मृति हो गई कि काम, क्रोध, लोभ ये तीन विकार नर्क के द्वार हैं? क्या मनुष्यों को इतना भी ज्ञात नहीं कि देवताओं के हाथ में कमल पुष्प क्यों होता है? पार्थ, तमोगुणी मानव ने तो पवित्र देवताओं का अपवित्र दर्शन करवाया है। देवता अर्थात दैवी गुण से संपन्न आत्माएं, उनमें ये असुरी गुण होना असंभव है। पार्थ, पूर्णतः असंभव है। देवताओं का यह असत्य, अयथार्थ एवं अज्ञान युक्त दर्शन नष्ट कर उनका निर्मल, पवित्र, मर्यादा एवं दैवी गुणों से युक्त संपूर्ण निर्विकारी जीवन संसार के सम्मुख प्रस्तुत करो। कहां वो प्रभा मंडल के साथ रत्न जड़ी सुवर्ण मुकुटधारी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का महान भारत, और कहां आज का भारत? युग, घटना, व्यक्ति, इन तीनों का तालमेल ठीक तरह ना होने से भारत का प्राचीन एवं त्रेता युग के अंत तक का श्रेष्ठ, निष्कलंक एवं दैवी इतिहास प्रायः लोप हो गया। पुराण कथा कोई इतिहास नहीं है पार्थ, उसी प्रकार महाभारत को इतिहास मानना विवेक युक्त नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैंने अपने वास्तविक जीवन में एक भी युद्ध ना किया ना देखा है, परंतु मेरे जीवन काल में महाभारत का युद्ध एवं समस्त हिंसक घटनाएं लेखक ने लिखी है। मैं सतयुग का प्रथम राजकुमार होते हुए भी मनुष्य मेरा जन्म द्वापर युग में मानते आए हैं। धनंजय, सतयुग त्रेता युग की वास्तविकता नष्ट होने का ये भी एक कारण है। इस काल चक्र ने ही सभी को दैवी संस्कृति की विस्मृति कराई है। बाकी रह गई है मूर्ति के रूप में देवताओं की अल्प स्मृति। कलयुगी मानव प्रतिदिन देवताओं की पूजा करता है, परंतु उनके जीवन कहानी को कौन जानता है? पार्थ, कौन जानता है? जब तक धर्म ग्लानी समय परमात्मा अवतरित नहीं होते हैं, तब तक ना इस श्री कृष्ण की यथार्थ जीवन कहानी कोई प्रतीत करता है, ना महाभारत की वास्तविकता। पार्थ, महाभारत की वास्तविकता तो इसी संगम युग पर स्पष्ट होती है। अतः परम पिता परमात्मा महाभारत की वास्तविकता स्पष्ट करते हैं कि महाभारत का युद्ध ना सतयुग में, न त्रेता युग में और न ही द्वापर युग में होता है, परंतु ये युद्ध तो कलयुग के अंतिम चरण में होता है।
नहीं केशव, नहीं, मुझे आप क्यों संभ्रमित कर रहे हैं? आपने अभी तक यही कथन किया कि महाभारत कथोकल्पित है, और अभी आपने ये विस्फोटक विधान किया कि महाभारत युद्ध कलयुग के अंत में होता है। हे मधुसूदन, आपके इस विधान पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महाभारत युद्ध कलयुग के अंत में होना असंभव है।
अनुज, आज के भारत का तनिक परीक्षण करो तो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सहज ही प्राप्त होगा। वर्तमान समय देशों देशों में युद्ध हो रहे हैं, घर घर में भी कलह है, समाज में भी धर्म के नाम पर अंतर्गत युद्ध हो रहे हैं, आतंकवाद चरम सीमा तक पहुंचा है, अपने स्वार्थ के लिए एक भाई दूसरे भाई का वध कर रहा है। हे महावीर, महाभारत युद्ध के तीन मूल कारण है। प्रथम एवं मुख्य कारण है स्त्री पर अत्याचार, दूसरा कारण है कुटिलता से द्यूत क्रीड़ा द्वारा किसी का सर्वस्व हरण करना, एवं तीसरा कारण है दूसरों के अधिकार की भूमि अवैध मार्ग से प्राप्त करना। इसी के कारण ही कलयुग में संघर्ष एवं युद्ध हो रहे हैं। पार्थ, ये महाभारत का युद्ध नहीं तो और क्या है? भले मनुष्यों की दृष्टि से व्यक्ति भिन्न है, परंतु घटना वही है। जब अणुयुद्ध से मनुष्य सृष्टि का भारी मात्रा में संहार होगा, तब इसी युद्ध को महाभारत का महाभारी युद्ध कहना उचित होगा। जिस प्रकार कथारूप महाभारत में पहले गीता ज्ञान प्रदान किया, तत्पश्चात युद्ध आरंभ हुआ, उसी प्रकार इस कलयुग के अंतिम चरण में जब परमात्मा संपूर्ण गीता ज्ञान प्रदान करेंगे, तब महाभारत का युद्ध महाविनाश के लिए आरंभ होगा, जिसे आज का मानव तीसरा महायुद्ध कहता है। पार्थ, इस युद्ध के उपरांत चौथा महायुद्ध कदापि नहीं होगा, क्योंकि इस युद्ध में बहुतांश मनुष्य सृष्टि स्वाहा हो जाती है। इस युद्ध का अंतिम परिणाम यही होगा कि जिनकी परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि होगी, उनकी पराजय होगी, अर्थात उनकी गणना कौरवों के पक्ष में होगी। कौरवों का कुप्रसिद्ध गायन यही है कि विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। पार्थ, इस महाविनाश के लिए जिन्होंने महाभारत प्रसिद्ध मुसल अर्थात मिसाइल्स बनाए हैं, ऐसे विज्ञान गर्वित यादवों का अंत इसी मिसाइल्स द्वारा ही होगा। पार्थ, इस महाभारी युद्ध में जो परमात्मा के श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे, ऐसे प्रीत बुद्धि पांडव तथा शिव शक्ति सेना की अंत में विजय होगी। अर्थात पांडवों का सुप्रसिद्ध गायन यही है कि प्रीत बुद्धि विजयन्ति, जिस विजय को विश्व की सबसे महान विजय मानी जाएगी। निसंशय ऐसे महान विजय के अधिकारी केवल ब्रह्मा कुमारियां एवं ब्रह्मा कुमार ही होंगे। समझ गए पार्थ, महाभारत युद्ध का काल कौन सा है, वास्तविक पांडव कौन है और कौरव कौन है?
हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने वर्णन किए हुए महाभारत को आज का मानव कदापि मान्यता नहीं देगा, क्योंकि उसके सम्मुख वही पौराणिक महाभारत है। कथारूप महाभारत को ही सत्य मानने से आज तक मनुष्य ने कितने ग्रंथ निर्माण किए हैं, जिसे पढ़कर मनुष्य प्रभावित होते हैं।
पार्थ, कोई कितनी भी महाभारत कथा अलंकारी, रमणी, रोचक एवं रोमहर्षक लिख दें, उसमें कितनी भी वास्तविकता प्रदर्शित करने का प्रयास करें, परंतु ज्ञानी वही है जो केवल सत्य परमात्मा तथा उनके सत्य वचन पर प्रभावित होता है, और परमात्मा के ये सत्य वचन ब्रह्मा के मुख से ही प्रकट होते हैं। अतः मैं यही प्रतिपादन करना चाहता हूँ कि इसी कलियुगी वास्तविक महाभारत को रमणीक, रोचक एवं अलंकारी करने अर्थ कौरव पांडव तथा भिन्न भिन्न विशेषता युक्त व्यक्तियों के आधार से कथाकार लेखक ने कलियुगी महाभारत को ही पुराण कथा का सुंदर तथा दिव्य रूप दिया है। अर्थात महाभारत एक रूपक है, जिस प्रकार चतुर्भुज विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण का रूपक है, देवी की अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का रूपक है और दशमुखी रावण स्त्री पुरुषों के विकारों का रूपक है, उसी प्रकार महाभारत कथा भी भिन्न भिन्न गुण एवं भिन्न भिन्न अवगुण युक्त व्यक्तियों का रूपक है। पार्थ, केवल रूपक है। महाभारत में जो नीति अनीति, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, लोभ त्याग, राजनीति में श्रेष्ठता एवं भ्रष्टता, सरल चित्त कपट चित्त, इन समस्त गुण एवं अवगुण युक्त विशेषताओं को भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा लेखक ने प्रस्तुत किया है। पार्थ, ये तो इसी कलयुग की विशेषता तथा सत्यता है, परंतु किस युग की घटना को मानव किस युग में ले आया? अतः इसमें अंशमात्र ही संदेह ना हो कि कलयुग के अंत में अणुशक्ति द्वारा ही महाभारत का महाभारी युद्ध होगा। उसमें नरकगामी रावण राज्य भस्मीभूत होकर प्रीत बुद्धि पांडवों के लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, जो स्वर्ग स्वयं परमात्मा इसी भारत में निर्माण करते हैं। अर्जुन, वर्तमान समय परमात्मा ब्रह्मा वत्सों को अर्थात पांडवों को अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, अतः पांडव कभी भी हिंसक युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते। वे तो केवल मानवी मन के अंदर छिपी हुई माया पर विजय प्राप्त करते हैं। पार्थ, किसी देश पर विजय प्राप्त करने से माया पर विजय प्राप्त करना अधिक वीरता है। जो इस प्रकार की विजय प्राप्त करते हैं, वही अहिंसक महावीर एवं अहिंसक वीरांगना है। यही धर्म युद्ध की विजय है, यही परमात्मा की विजय है, यही सत्य महाभारत के सत्य पांडवों की विजय है। हे पार्थ, तुम वो अर्जुन नहीं हो जिसने कुरुक्षेत्र पर गीता ज्ञान श्रवण करने के पश्चात अपने ही सगे संबंधियों का निर्धारण किया था, परंतु तुम वो अर्जुन हो जो निराकार परमात्मा से भगवद गीता का ज्ञान श्रवण कर अपने ही मस्तक के कुरुक्षेत्र पर माया अर्थात पांच विकारों का निर्दालन कर रहे हो। पार्थ, तुम वो अर्जुन नहीं हो जिसे महाभारत का महारथी योद्धा अर्थात क्षत्रिय माना गया है, परंतु तुम वो अर्जुन हो जो वर्तमान समय अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, और ब्राह्मणों का कर्म यही है कि माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर सदा के लिए मायाजीत होना।
मैं समझ गया ऋषिकेश, मुझे भी इस माया पर ही विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि इसी माया ने मेरा जन्म जन्मांतर का आत्मिक पतन किया है। यदि मैंने इस कल्प में माया पर विजय प्राप्त नहीं की तो मुझे प्रत्येक कल्प में माया से पराजित होना पड़ेगा।
नहीं अर्जुन, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, प्रत्येक कल्प में तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करनी ही है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस विशाल संसार में अंतिम विजय उसी की होगी जिसके पास सत्य परमात्मा का मत है, जिसे श्रीमत कहा जाता है। माया पर विजय प्राप्त करने के उपरांत पांच तत्वों सहित समस्त मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। पांच तत्व भी योग बल से सतो प्रधान होकर विश्व में शाश्वत एवं संपूर्ण सुख शांति युक्त सतयुगी स्वर्ग निर्माण होता है। पार्थ, जो आत्माएं मानवी जीवन से त्रस्त होकर कहती है कि अब हम और दुख सहन नहीं कर सकते, हे भगवान, हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करो। इस प्रकार की मुक्ति की इच्छा रखने वाली आत्माएं मुक्ति की अवस्था में ब्रह्मलोक चली जाएगी, और जो आत्माएं इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर कर्मातीत एवं जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करेगी, निस्संशय उनका जन्म सतयुगी जीवन मुक्त युग में ही होगा। फलस्वरूप आधा कल्प के लिए सभी आत्माओं को शांति ही शांति प्राप्त होती है। इसी प्रकार सभी आत्माओं का कल्याण हो जाता है। ये है सत्य महाभारत का अंतिम परिणाम।
हे श्रीपाद, सत्य महाभारत का अंतिम परिणाम कितना कल्याणकारी है ये मेरे ध्यान में आ चुका है। अब कथारूप महाभारत का अंतिम परिणाम कृपया कथन करें।
पार्थ, उस कथारूप महाभारत का परिणाम मानव मात्र को अत्यंत उदास करने वाला है। न उसे कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है, न ही जीवन मुक्ति। उसमें पांच पांडवों की विजय अवश्य प्रदर्शित की है, परंतु मन की शांति एवं संतुष्टता किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। राज्य प्राप्त करने के उपरांत भी राज्य शासन में पांडवों का मन नहीं लगता था। सभी पांडवों को अभिमन्यु और कर्ण के मृत्यु का दुख होता है। युद्ध विराम के उपरांत अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों का कपट नीति से वध होता है। फलस्वरूप पांडवों की दुख की अग्नि और ही भड़क उठती है। धृतराष्ट्र और गांधारी को दुर्योधन दुशासन सहित अपने 100 पुत्रों के मृत्यु का दुख, तो अर्जुन को भीष्माचार्य शरपंजरी होने का दुख। इस श्रीकृष्ण को भी गांधारी द्वारा श्राप मिलता है कि तुम्हारे कुल का सर्वनाश होगा। अंत में मैं जब निराश होकर वृक्ष के नीचे बैठता हूँ तो किसी व्याध का बाण मेरे अंगूठे को लक्ष्य करता है और मेरा अंत होता है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के देहांत का वर्णन श्रवण करने के पश्चात मनुष्य उदास हो जाते हैं। क्या क्या लिख दिया है लेखक ने अपनी कल्पना द्वारा। भरत श्रेष्ठ, अब मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि परमात्मा द्वारा प्रस्तुत किया हुआ सत्य महाभारत कल्याणकारी है अथवा मनुष्य निर्मित कथारूप महाभारत।
इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है केशव। यदि परमात्मा कल्याणकारी है तो उसने कथन किया हुआ सत्य महाभारत अवश्य ही कल्याणकारी है।
पार्थ, महाभारत पढ़ने से अथवा श्रवण करने से सतयुग की निर्मिति नहीं होती, परंतु परमात्मा निर्मित सत्य महाभारत से सतयुग की निर्मिति होकर एक सत्य धर्म की स्थापना होगी। जाओ पार्थ, पथभ्रष्ट समाज को परमात्मा निर्मित सत्य महाभारत का ज्ञान दो। उन्हें ये भी कथन करो कि आप भी परमात्मा निर्मित सत्य महाभारत के प्रीत बुद्धि युक्त पांडव एवं सर्वशक्तिवान परमात्मा की भुजाएं हो सकते हैं। हे शिवनंदन, प्रत्येक कल्प में एक ही बार परमात्मा सत्य महाभारत का एवं सत्य गीता का अमूल्य ज्ञान देकर सत्य नारायण का सतयुग निर्माण करता है। परंतु ये निश्चित है कि जब तक परमात्मा इस धरा पर ना आए तब तक कथारूप महाभारत को ही सभी मनुष्य सत्य मानते हैं, अर्थात तब तक अज्ञान का अंधकार होता है। अब तुम्हें संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है। पार्थ, इस सत्य महाभारत का सत्य प्रकाश समस्त विश्व में फैलाना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि कलयुग की घोर रात्रि अब समाप्त होकर नवयुग की सुवर्ण प्रभात होने वाली है। ये प्रभात ऐसी है जिसमें मनुष्य मात्र को दुख की अविद्या होकर केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद एवं शांति ही शांति प्राप्त होगी। हे महावीर, अब नवयुग के लिए शंख ध्वनि करो। इसी शंख ध्वनि द्वारा विश्व की समस्त मनुष्य आत्माओं को ये संदेश दो कि शीघ्र ही इस भारत वर्ष में स्वर्णिम युग आने वाला है। यदि आपको इस स्वर्णिम युग का, इस नवयुग का स्वागत करना है एवं नवयुग में जन्म प्राप्त करना है तो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करो। उठो पार्थ, उठो, अब समय नहीं गवाओ। शीघ्र ही नवयुग का शंख ध्वनि करो, शंख ध्वनि करो।
हे विश्व महाराजन, आपकी आज्ञा शिरसावंद्य है। इसी क्षण मैं शंख ध्वनि करता हूं।
हे भरतवंशी, हे कुलभूषण, मुझे यह विश्वास है तुम्हारे इस शंख ध्वनि से केवल भारत ही नहीं परंतु समस्त संसार ही जाग उठेगा। यह शंख ध्वनि आत्मा में ज्ञान का नवप्रकाश निर्माण करेगा। परिणाम स्वरूप जो भी मनुष्य दीर्घ काल से अज्ञान अंधकार में निद्रिस्त हो चुके हैं, ऐसे कुंभकर्णों की निद्रा समाप्त हो जाएगी और पुनः इस वसुंधरा पर सुवर्ण प्रभात होकर नवयुग आरंभ होगा पार्थ, जहां नई उमंग, उत्साह, नई चेतना एवं नई मर्यादाएं होगी, जहां एक धर्म, एक भाषा एवं एक ही दैवी कुल होगा, जहां दैवी मर्यादा से युक्त उच्च संस्कारित समाज होगा, जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति मन वचन कर्म से पूर्णतः शुद्ध होगा, अर्थात सर्वश्रेष्ठ संस्कृति की स्थापना होगी, जहां प्रत्येक मानव के प्रत्येक कर्म में अहिंसा, पवित्रता तथा आत्मिक शुद्ध प्रेम होने के कारण मानवीय जीवन पर निरंतर एवं असीम सुख शांति की वर्षा होगी। ये मानवीय सृष्टि सुख शांति एवं वैभव के परमोच्च बिंदु पर पुनः विराजमान होगी। पार्थ, यही से स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम इतिहास आरंभ होगा।
भारत का भाग्य जगाएगा,
हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आज आपने इस मौलिक स्वाध्याय द्वारा महाभारत के विषय में जो ज्ञान प्रदान किया, उससे मेरा बुद्धि रूपी कलश परिपूर्ण हो चुका है। मुझे आप सभी को यही संदेश देना है कि भारत की मूल संस्कृति संपूर्ण अहिंसक थी और उसी संस्कृति का परमात्मा द्वारा पुनर्निर्माण हो रहा है, जहां सभी मानव अहिंसा परमो धर्म से युक्त होंगे। इस नवयुग में ये कोई प्रवचन नहीं करेगा कि अपने काम क्रोधादि विकारों का त्याग कर निरंतर एक परमात्मा की स्मृति में रहो कमलाकर। वहां ना कोई मंदिर होगा, ना शास्त्र होगा, ना भक्ति होगी और ना ही परमात्म ज्ञान होगा। तथापि वहां सभी आत्माओं में प्राकृतिक पवित्रता होगी। इस प्रकार है मकरंद, महाभारत की सत्यता और अनेक रहस्य प्रतीत करने से मेरे मन में अंश मात्र भी संभ्रम नहीं रहा। अतः आपके तथा परमात्मा के प्रति मेरा विनम्र धन्यवाद एवं शतशः प्रणाम।
ओम शांति। द्वापर युग से मनीष रामायण महाभारत की कथा श्रवण करते आया है, परंतु उसने ये कभी प्रतीत नहीं किया कि वास्तविक महाभारत कब होता है, कैसे होता है, उसे प्रेरणा देने वाला कौन है तथा महाभारत संबंधी व्यक्ति कौन कौन है। जब परमात्मा का अवतरण इस साकार सृष्टि पर होता है, तब ही महाभारत एवं भगवद गीता की सत्यता का प्रकाश मानव मात्र को प्राप्त होता है। फलस्वरूप इस विषय में मनुष्य के सभी संभ्रम दूर होकर बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होता है। वर्तमान समय की वास्तविकता तो यह है कि महाभारत युद्ध पूर्व की ही परिस्थिति संपूर्ण विश्व में निर्माण हुई है। कौन से क्षण में कौन सी परिस्थिति निर्माण होगी, ये कहना कठिन है। परिस्थिति कैसे भी निर्माण हो, परंतु हमें परिस्थिति का सामना कर परमात्मा की स्मृति एवं आत्मबल द्वारा परिस्थिति को पार करना है। परमात्मा आपसे यही सहयोग चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर स्वयं की ज्योत जगाओ, साथ ही साथ अन्य आत्माओं की भी ज्योति जगाओ। ओम शांति।